रहे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु आपके प्यार के सामने आपकी पवित्रता के सामने दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। आराधना
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर का दास जकरयाह इसराइलियों को उत्साहित करता है उनके बंधुआई में और उन्हें प्रोत्साहन देता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं अपने बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रभु जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने पाए, उन्हें उनके कमी और घटियों को दिखाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन के द्वारा आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीषित करें जो बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम जकरयाह की पुस्तक में देख रहे हैं कि यद्यपि स्वदेश लौटने वाले इसराइलियों का जीवन स्तर बहुत सुधर गया था, उनके मन में संकोच था कि परमेश्वर उन्हें आशीष क्यों नहीं दे रहा है। अतः वे यरूशलेम में मंदिर के याजकों से पूछते हैं कि वे रीति के अनुसार उपवास रखकर विलाप करते हैं, परंतु परमेश्वर से वे आशीष नहीं पा रहे हैं। क्या उन्हें उपवास रखना और विलाप करना आवश्यक है, करना चाहिए या नहीं? इसके उत्तर में परमेश्वर जकरयाह के द्वारा उन्हें संदेश भेजता है। जब तुम्हारा मन सही है तो धार्मिक संस्कार भी सही है, और मन सही ना हो तो रीतियों को निभाना व्यर्थ है। जी हाँ, यह हम सब के लिए भी है। यदि हमारे मन सही हैं परमेश्वर के सम्मुख में तो हम आशीष पाते हैं, यदि नहीं तो जो भी हम रीति रिवाज या जो भी रीति विधि करते हैं सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ेंगे और जकरयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे। जकरयाह 7 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे के देश भी बसे हुए थे? मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, दक्षिण देश अर्थात नेगेब और नीचे का देश, यह क्षेत्र बशेरबा हेब्रोन से एक्रोन का तट पूरी हरी भरी चारागाह है। वहां भयानक रेगिस्तानी आंधियां चलती हैं। परमेश्वर उनसे कहता है, तुम तो पहले भी इन धार्मिक कृत्यों को करते थे, परंतु इसका क्या परिणाम हुआ? तुम्हारे बंधुआई में जाने का कारण था कि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और मेरे भविष्यत वक्ताओं की बातों पर चित नहीं लगाया। कहता है, मन सही नहीं तो धार्मिक कृत्य उचित नहीं। मेरे प्रिय, पद 8 से आरंभ करके परमेश्वर कहता है कि मन के गलत होने पर धार्मिक कृत्य भी गलत हो जाता है। आप यह न समझें कि वह दूसरे शब्दों में कह रहा है कि मन सही हो तो धार्मिक कृत्य सही है। परमेश्वर उन्हें स्पष्ट आज्ञाएं देगा जो मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंधों से संबंधित है, और तब उन्हें यह समझ में आएगा कि उनके मन सही नहीं है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद शमौन पत्रस से जो कहा था वह अत्यंत मनभावन है। उसने कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु के स्थान पर मैं होता तो पत्रस को खरी खोटी सुना देता। आपके मन की भावना परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न कि आपके धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य। कुछ विश्वासियों के लिए धर्म एक कार्य है, कृत्य है, या एक अनुष्ठान है, या एक वैधानिक निर्जीव रूप है, एक पद्धति है जिसमें उबाऊ मंत्र जाप है। आज हमारी कलीसियाओं में बहुत धार्मिक कूड़ा है, थकाने वाले विशेषण और धार्मिक उक्तियां हैं। लोग प्रायः कहते हैं, हम अपना विश्वास बांटना चाहते हैं, जबकि सच तो यह है कि उनके पास बांटने योग्य विश्वास है ही नहीं। आप कैसे महान हैं, या परमेश्वर ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, यह विश्वास नहीं है। विश्वास का अर्थ है आप मनुष्यों को बताएं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए, आपके जीवन के लिए क्या किया है, वह कौन है। उद्धार के लिए हम कहते हैं, प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंप दो। क्या उसे आपके जीवन की आवश्यकता है? हमारा जीवन और कार्य परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है, वह उनका क्या करेगा? हमारे शब्द सुसमाचार को उसके वास्तविक अर्थ से वंचित कर देते हैं। आज धर्मशास्त्र के महान शब्द प्रेम अपने जीवंत समृद्ध बाइबल अर्थ को खो चुका है। मैंने एक बार देखा जिसके पीछे लिखा था, आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो हॉर्न बजाएं। गाड़ी में लिखा हुआ था, आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो हॉर्न बजाएं। और वह हॉर्न बजाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण अन्य कार चालकों को असुविधा हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि उससे कह दूं, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने और अन्य मनुष्यों को सच्ची बात सिखाएं और उसके निकटता में लाएं, उनके साथ शिष्टता का व्यवहार करें। मेरे मित्रों, आज का मसीही विश्वास स्वाद रहित हो गया है। मसीह के साथ व्यक्तिगत जीवन उसमें नहीं है कि फल उत्पन्न करे। कुछ लोग ऐसी बातें सुनकर बोर हो जाते हैं। मसीह से संबंधित जीवन के बिना आपके धार्मिक अनुष्ठान सब व्यर्थ हैं। यदि प्रभु को ग्रहण योग्य जीवन की लालसा ना हो, उसे और उसके वचन को जानने की इच्छा आप में ना हो, तो यह ऐसा है जैसे एक युवक सजे हुए घर से प्रेम करके स्टोव, फ्रिज या झाड़ू से विवाह करे। एक युवती से पूछा गया कि उसने विवाह क्यों नहीं किया, तो उसका उत्तर बड़ा रोचक था, मेरे पास एक स्टोव है जो धुआं देता है, एक कुत्ता है जो घर के बाहर भौंकता है, एक बकबक करने वाला तोता है, एक आलसी बिल्ली है जो रात में बाहर रहती है, तो फिर मुझे एक पति की क्या आवश्यकता है। अधिकांश विश्वासियों का संबंध प्रभु यीशु के साथ ऐसा ही है। परमेश्वर के साथ भी उनका संबंध ऐसा ही है। अतः हम कलीसिया का खेल बंद करके प्रभु यीशु से प्रेम करना और उसके लिए जीवन जीना आरंभ कर दें। मेरे मित्रों, आज समय कम है और आप समय का सही उपयोग करें। मुझे एक 55 वर्षीय दादी माँ ने पत्र लिखा कि उसे मसीह का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त था, परंतु मन का बोध नहीं था। परंतु 2 वर्ष हुए उन्होंने नया जन्म पा लिया है। मेरा रेडियो कार्यक्रम सुनकर उन्होंने मुझे पत्र लिखा। वह हमारे आवासीय आराधनालय में भी जाती थी। एक 30 वर्षीय महिला ने मुझे लिखा कि उसकी परिचित महिला हमारा कार्यक्रम उस पर थोपने का प्रयास करती थी, परंतु उसके अव्यवस्थित जीवन के कारण वह स्त्री मेरे कार्यक्रमों को सुनना नहीं चाहती थी। परंतु जब उसने सुना तो वह दुखी थी कि उस फूहड़ स्त्री के कारण वह मेरे बाइबल अध्ययनों से इतने वर्ष दूर रही। जी हाँ, यह एक विश्वासी महिला है जो सब मसीही कार्यक्रमों को सुनती है, परंतु उसका जीवन और परिवार मसीह के लिए अपमान का कारण है। मेरे मित्रों, ऐसे मनुष्य के लिए धार्मिक संस्कार किस काम के हैं? दूसरी ओर, यदि आपका संबंध परमेश्वर के साथ उचित है और आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो धार्मिक रीतियों को निभाना अच्छा है। इस समय मुझे एक छोटी सी बालिका की कहानी स्मरण आती है। उनके घर अतिथि आने वाले थे, अतः उसकी माता ने उसे जाकर सोने के लिए कह दिया। उसने यह भी कहा कि वह प्रार्थना करके सोए। सुबह माता ने बच्ची से पूछा कि क्या उसने सोने से पहले प्रार्थना की थी। उसने कहा, जी हाँ, एक प्रकार से प्रार्थना की थी। माता ने पूछा, क्या एक प्रकार से? उस बालिका ने कहा, मैंने घुटने टेके और प्रार्थना करने जा रही थी कि मैंने सोचा परमेश्वर एक ही प्रार्थना सुनकर ऊब गया होगा, अतः मैंने बिस्तर में लेटकर परमेश्वर को 3 भालुओं की कहानी सुनाई। मेरे प्रियो, मेरे विचार में उस रात जब इस छोटी बालिका ने, बच्ची ने प्रार्थना को दिखावे का काम समझकर परमेश्वर को 3 भालुओं की कहानी सुनाई, तो निश्चय ही परमेश्वर ने उसकी कहानी सुनी होगी। आज कलीसियाओं की आराधनाएं भी ऐसी ही रोचक हो कि परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर पाए। आज हमारी कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ समस्याओं का कारण क्या है? हम परमेश्वर से मन लगाए बिना आराधना विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा कर रहे हैं। हम आराधना में उपस्थित होकर संतुष्ट होते हैं, परंतु क्या यह सच है? क्या हम प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होते हैं? क्या हम उसे जानते हैं? आज बहुत से लोग हैं, कलीसिया में आते हैं, परंतु प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आप प्रभु के साथ सही संबंध में हैं तो किसी भी अनुष्ठान को आप कर सकते हैं। मेरे मित्रों, धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों को पूरा करना आज भी एक विवाद का विषय है, एक प्रश्न है। मेरे विचार में कलीसिया के 2 संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बपतिस्मा और प्रभु भोज। परंतु बपतिस्मे में दिखावे की अपेक्षा मन का परिवर्तन ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम नया जन्म कहते हैं। बपतिस्मे की भी 2 विधियां हैं। कुछ का मानना है कि छिड़काव का बपतिस्मा सही है और कुछ का मानना है डूब का बपतिस्मा सही है। मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता हूं। बपतिस्मा में यदि आपका मन सही नहीं है तो आपका बपतिस्मा निरर्थक है। आप यदि प्रभु यीशु की ओर फिरकर उसके साथ उचित संबंध ना बनाए, पापों की क्षमा ना पाए, तो बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। मुझे इस बात का दुख भी है कि कुछ लोगों के लिए प्रभु भोज भी व्यर्थ है। लोगों का कहना था, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि और हमारे विश्वास की दृष्टि दोनों का मिलन अनुष्ठानों में होता है। मेरे मित्रों, बेबीलोन की बंधुआई से पूर्व परमेश्वर ने यरूशलेम को दंड दिया क्योंकि वे उससे बहुत दूर थे, जबकि उनके काम व्यवस्था के अनुसार थे। पद 7 में परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता और सुनाता रहा जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों को बना रहा था और चैन से था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था के कामों को पूरा करने के उपरांत भी वे बंधुआई में गए। क्यों? क्योंकि उनका मन सही नहीं था, उचित नहीं था। अतः मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपके मन में किस प्रकार की बातें गूंज रही है, घूम रही है। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अंतिम भाग में परमेश्वर विशेष करके उन बातों का उल्लेख करता है जिनके कारण वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। वह 10 आज्ञाओं के उस भाग का उल्लेख करेगा जिसमें मनुष्यों का मनुष्यों के साथ संबंध व्यक्त किया गया है। पिछले अध्याय में परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को व्यक्त किया गया है जिसमें मनुष्य का मन परमेश्वर के साथ उचित संबंध में ना हो तो अनुष्ठान व्यर्थ है। इस अंश में अनुष्ठान उचित नहीं क्योंकि मनुष्य का मन उचित नहीं है। परमेश्वर उनकी चूक को अलग अलग बताएगा। हम अपने पाप के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, या यूं कहें कि हम अपने पाप के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा करना आवश्यक है। मेरे प्रियो, एक महिला मेरी बात को काट कर कहती थी कि पाप क्षमा के बाद हम पापी नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि हम उद्धार प्राप्त पापी हैं। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामने होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। उस दिन तक मैं पापी हूं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है, व्यक्ति के अपने अपराध और पाप की वास्तविकता को उसके मानसिक रोग या परिस्थिति का परिणाम कहा गया है, परंतु पाप को शब्दों की कला से नहीं छिपाया जा सकता, जैसे रोग, विकलांगता या असंतुलन, अनैतिकता और अनाचार का व्यवहार भी तो है, गलत काम करना भी तो है। दूसरे शब्दों में हम पापी हैं। मैं तो वर्षों से यही कह रहा हूं, केवल परमेश्वर ही है जो हमारे मन और मानवीय व्यवहार को समझता है। यर्मिया की पुस्तक 17:9 में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है और केवल वही जानता है। यदि हम अपने आप को वैसा ही देखें जैसा परमेश्वर देखता है तो हम अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगे। केवल परमेश्वर ही हमारे साथ निर्वाह कर सकता है। हम परमेश्वर के वचन को अपना कर उस पर निर्भर रहें। परमेश्वर उनके जीवन में अपनी आज्ञाएं निहित करना चाहता है, आपके जीवन में निहित करना चाहता है। हमें भी ऐसा ही करना है, और यह मैं नहीं परमेश्वर का वचन कहता है। यदि हम पहला और दूसरा तीमुथियुस की पत्री का गहराई से अध्ययन करें तो अधिकांश प्रचारक प्रचार मंच से उतर आएंगे। अधिकांश विश्वासी शिशुओं की नाई हैं जिन्हें वचन का झुनझुना चाहिए, कुछ एक अनुष्ठान चाहिए कि वे कुछ ही दिनों में पूर्ण परिपक्व विश्वासी बन जाएं। मैं 5 वर्ष बाइबल अध्ययन करवा कर भी अपने आप को वचन के संबंध में शिशु ही समझता हूं, दुर्बल ही समझता हूं। कुछ प्रचारक थोड़े ही समय बाद भविष्यवाणियों का अध्ययन आरंभ कर देते हैं। ऐसे शिक्षकों को सर रॉबर्ट एंडरसन भविष्यवाणी बेचने वालों की निस्सार पुकार कहते हैं। हम अधिकतर अच्छे से संतुष्ट हो जाते हैं जबकि परमेश्वर हमें सर्वोत्तम देना चाहता है। काश हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जीवन को देखें और अच्छा नहीं परंतु सर्वोत्तम को पाने का यत्न करें। मेरे मित्रों, आज हम अपने अपने जीवन को देखें कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। क्या हमारा जीवन अच्छा है या सर्वोत्तम है? क्या आज हम अनुष्ठानों को पूरा करके ही संतुष्ट हैं या प्रभु को हम नजदीकी से जान रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो आज के वचन के प्रकाशन में हम अपने जीवन को जांचें, देखें और प्रभु के पास लौट आएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम नाश ना हो परंतु बचाए जाएं। मेरे प्रियो, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।